Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
सार्थक प्रयोग मालूम हो सकता था, क्योंकि हमें आदत है वेदांत का चिंतन करने वाले लोगों के लिए आत्मा, ब्रह्म, साक्षी, कूटस्थ, त्वंपद लक्ष्य आदि शब्दों की आदत है, अभ्यास है। लेकिन यहां पर उन्हें ओम शब्द के द्वारा उस तत्व का प्रतिपादन करना चाहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अपने आप में शब्द महत्वपूर्ण है और उस शब्द का अर्थ भी अति महत्वपूर्ण है। आप मांडुक्य उपनिषद में आगम प्रकरण में पढ़ेंगे, वहां बहुत सविस्तर वर्णन किया इसका। ये जो ओम शब्द है, इसमें चार चीजें हैं, चार पाद हैं। तो ओम शब्द चतुष्पाद है। योग वाशिष्ठ में जब वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को उपदेश कर रहे थे, तो राम जी को यह उपदेश किया, ओंकार मात्र मिदम जगत। उन्होंने कहा कि हे राम, तुम अनुभव करो, ये संपूर्ण जो विश्व है वो ओंकार मात्र है, ओंकार मात्र है। ये संपूर्ण विश्व ओंकार मात्र कैसे हैं, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है, आकार, उकार और अमात्र। इस बात को बहुत ध्यान देके श्रवण करें आप। इसमें चार पाद हैं, अ, उ और म, ये तीनों मिलकर के बनता है आपका ओम। इसमें एक आकार है, उकार है और मकार, ये दृश्य माने आपको सुनाई देने वाले, दिखाई देने वाले, ये तीन पाद हैं। और एक चतुर्थ पाद है जिसको शास्त्र ने कहा अमात्र, आकार, उकार और अमात्र। ये पहले जो तीन पाद है ना, वो मात्र है, मात्रा है। और जो चतुर्थ पाद है वो अमात्र है। बहुत गहरी बात कही यहां पर। ये आकार, उकार, मकार में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है। आकार से आप जागृति ले, उकार से आप स्वप्न और मकार से सुषुप्ति। आकार, उकार, मकार, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। आप बहुत ध्यान दे के सुनेंगे इस बात को आप। और चतुर्थ जो पाद हैं वो अमात्र हैं। ये आपके ओंकार का अर्थ है। आपके ओंकार में चार पद हैं, पाद हैं, आकार, उकार, मकार और अमात्र। ये पहले जो है ना मात्रा है, और चतुर्थ जो है अमात्र है। और आश्चर्य की बात, अमात्र का अर्थ क्या होता है? मात्रा का अभाव। जो चतुर्थ तत्व है, अमात्र माने मात्रा का अभाव, जहां मात्रा ही नहीं है। और मात्रा शब्द का अर्थ होता है मियते इति मात्रा, जहां नापा जाए, तोला जाए, जाना जाए, जहां उपकरण आदि साधनों का आलंबन लिया जाए, उसको बोलते मात्रा। जैसे आप बोलते ना, ये कितनी मात्रा है, आप कई बार बोलते हैं भैया ये कितनी मात्रा में भेजे हम, आपको भेजना है ये चीजें तो कितनी मात्रा में भेजे, माने वहां नापना है। आपके वेदांत शास्त्र में एक शब्द है बहुत महत्वपूर्ण, प्रमाता। अक्सर ये शब्द आप श्रवण करते होंगे, प्रमाता। और ये जो प्रमाता है ना, प्रमाता का अर्थ ही है नापने वाला। ये आकार, उकार और मकार, ये मात्रा इसीलिए है क्योंकि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं ये नापने वाली अवस्थाएं, ये जीवात्मा नाप लेता है। जैसे हम जब बाहर के पदार्थों को देख लेते हैं तो बाहर के पदार्थों को नाप लेते हैं, हमारी आंख बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद पदार्थों को नाप लेती है। कितनी आश्चर्य की बात, हमारे आंखों के सामने कोई व्यक्ति गुजरता है और हम उसको देख लेते हैं, देखने के बाद हमारी आंखें उसको नाप लेती हैं, ये व्यक्ति काला है, ये व्यक्ति गोरा है, ये व्यक्ति इतना फुट ऊंचा है, इसकी नाक ऐसी है, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसकी चाल ढाल ऐसा है। हम संपूर्ण उसके व्यक्तित्व को, उसके आकार को, उसके सौंदर्य को, उसकी कुरूपता को नाप लेते हैं। और ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों जो अवस्थाएं हैं, ये नापने की अवस्थाएं हैं। हम जागृति के पदार्थों को नाप लेते हैं और बिना नापे उस वस्तु का मालूम होना भी संभव नहीं है। हम नाप लेते हैं इसीलिए वो वस्तु हमारे मन में आ जाती है, हमारे माइंड में आ जाती है। और उस वस्तु को यदि आप न नापे तो वस्तु आपके माइंड में नहीं आती। एक नक्शा बनता है, ये आकार की संवेदना है, ये दुनिया की संवेदना, निराकार की संवेदना नहीं है, एक आकार की संवेदना है, एक आकृति है, एक नक्शा है, जिसको आप स्मृति बोलते हैं, वो नक्शे के अलावा और कुछ नहीं है, एक फोटो है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं हमारी इंद्रियां बाहर जाती हैं और वो फोटो ले लेती हैं, और वो फोटो क्या, एक आकृति है, एक मात्राएं हैं। और यही तो प्रमाता होना है, यही तो जीव का होना है। प्रमाता माने जीव, जीव के लिए प्रमाता शब्द का प्रयोग किया है। ये अकार, उकार और मकार ये मात्रा है, ये प्रमाता की चीजें हैं, ये जीव की चीजें हैं। ये संपूर्ण जगत है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। आश्चर्य की बात, आप संपूर्ण जगत को नापना चाहते हैं, संपूर्ण जगत को आप केवल तीन शब्दों में कहना चाहते हैं तो आप इन तीन शब्दों में कह सकते हैं। इस दुनिया में आपकी जो भी अनुभूति है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, यही तो है। और इन तीनों का अनुभव करने वाले जीवात्माओं के नाम भी अलग अलग। जागृत अवस्था अभिमानी जीवात्मा का नाम विश्व, विश्व के साथ जुड़ जाता है, व्यक्ति विश्व के साथ जुड़ जाता है, इसलिए जागृत अवस्था के अभिमानी जीवात्मा का नाम विश्व है। स्वप्न अवस्था के अभिमानी जीवात्मा का नाम तेजस है, और सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी जीवात्मा का नाम प्राज्ञ है। और ये नाम भी बड़े मजेदार हैं, ये जीवात्मा के नाम है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये जीवात्मा के नाम, ये प्रमाता के नाम है, ये हमारे नाम है। और इसको प्राज्ञ भी इसीलिए बोला है, प्राज्ञ माने प्र और आगे आज्ञ है, अच्छी प्रकार से, प्र माने अच्छी प्रकार से, आज्ञ माने नहीं जानने वाला। हम जब सुषुप्ति में चले जाते हैं तो हम जानने वाले नहीं रहते, हम नहीं जानने वाले हो जाते। जागृत अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में हम जानने वाले बन जाते हैं, बहुत सारी चीजों को हम जान लेते हैं और बहुत सारी चीजों को नहीं भी जानते हैं। ये जागृत अवस्था पूर्ण ज्ञान की अवस्था नहीं है। हम जागते समय पूर्ण दावे के साथ नहीं कह सकते कि हम सब कुछ जानते हैं, यहां पर भी नहीं जानने की प्रक्रिया है। लेकिन जब हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं उस समय हम प्राज्ञ बन जाते हैं। प्राज्ञ माने अब हम जानने की प्रक्रिया से रहित हो गए हैं, अब हम नहीं जान सकते, कुछ भी नहीं जान सकते। इसलिए पंचदशी कारण सुषुप्ति के बारे में लिखा, किंचित न अवेदिशम, आदमी की अनुभूति होती है, मैं कुछ नहीं जानता था, मैं सोया था और कुछ भी मेरे को पता नहीं था। यही तो प्राज्ञ होना, ये जीवात्मा का प्राज्ञ होना है, ये हमारे जीव की अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आकार उकार मकार, और एक तत्व है उससे भी परे जिसको आप अमात्र अमात्र कहते जा रहे हैं, उसको बोलते तुरीय तत्व। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और जो चतुर्थ चीज है ना, वो तुरीय तत्व है और ये ओंकार के अंदर है, आप बाहर न समझे इसको। आप जब भी ओम बोलते हैं तो ओम में चारों चीजें हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय चीज। और ये जो तुरीय अवस्था है, ये चतुर्थ अवस्था उस आत्म तत्व की अवस्था है, ये ब्रह्म तत्व की अवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव है, जागने का अनुभव, सोने का अनुभव, स्वप्न देखने का अनुभव, लेकिन वो चतुर्थ जो अवस्था उसका अनुभव नहीं है। और उस अवस्था को समझने के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर न हम जाग रहे हैं, न हम स्वप्न देख रहे हैं और न हम सो रहे हैं, लेकिन है। आप थोड़ा कल्पना कीजिए, आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि वो चीज क्या होगी, वो अनुभव क्या होगा, जहां हम न जग रहे हैं, न हम स्वप्न देख रहे हैं और न हम सो रहे हैं, लेकिन हम हैं। वो जो अवस्था, उस अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था, और उसी अवस्था को साक्षी की अवस्था कहा है। उसी अवस्था को आत्मज्ञान की अवस्था कहा है। आपको मैं भागवत का एक दृष्टांत देता हूं ये साक्षी अवस्था को समझने के। आपने भागवत के प्रकरणों में जरूर सुना होगा, सुखदेव जी महाराज भाग रहे थे, घर का त्याग कर अपने माता पिता को छोड़कर 12 वर्ष की उम्र है भाग रहे हैं। समझा रहे हैं व्यास जी महाराज, उनकी मां समझा रही है, बेटा मत जाओ, हमको छोड़ के मत जाओ। मां तो द्वार तक रुक गई, लेकिन व्यास जी महाराज और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, घर का त्याग कर वन की यात्रा पर चल पड़े। और जब वो गांव छोड़ के वन की ओर प्रस्थान करने लगे, दोनों के बीच में एक नदी है, व्यास जी महाराज जी के मन में पुत्र प्रेम इतना जागृत हुआ है और वो छोड़ना नहीं चाहते, बार बार बेटा बेटा कहते हुए सुखदेव जी महाराज जी के पीछे पीछे जा रहे। और सुखदेव जी महाराज आंखें अर्धोन्मिलित नेत्र हैं और वो बिल्कुल आत्मिक अवस्था में आगे बढ़ते जा रहे हैं। नदी पर बहुत सारी स्त्रियां स्नान कर रही, वहां से गुजर गए, स्त्रियों ने वस्त्र शरीर पर धारण नहीं किए। एक बहुत अद्भुत बात थी वो। आप सुखदेव जी महाराज जी को पूछे और व्यास जी को पूछे तो आपको जमीन आसमान का अंतर मालूम पड़ेगा, दोनों भी महापुरुष हैं और वो दोनों भी एक अपनी कक्षा में हैं। उस तत्व के बोध से परिपूर्ण दोनों भी हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज जी की उस समय की स्थिति क्या है और उस समय की व्यास जी महाराज जी की स्थिति क्या है। व्यास जी महाराज जी को मालूम पड़ रही थी, स्त्रियां वहां पर मालूम पड़ रही थी, वो स्नान कर रही हैं, मालूम पड़ रहा था, उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। और जैसे वहां पर पहुंचे व्यास जी महाराज, उन स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन वहां से जब सुखदेव जी महाराज गुजरे तो सुखदेव जी महाराज जी को देख करके उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। उसका कारण था, जब सुखदेव जी महाराज गुजरने लगे तो उन्हें मालूम ही नहीं पड़ी कि यहां पर स्त्रियां हैं कि पुरुष हैं, वस्त्र के साथ हैं कि बिना वस्त्र की हैं। ये तो साक्षी भाव है। आप सुखदेव जी महाराज जी को पूछना, आप जहां से गुजर रहे थे आपने कुछ देखा क्या? सुखदेव जी महाराज ये नहीं बोलेंगे मैंने देखा नहीं, क्योंकि आंखें थी, गुजर रहे थे, रास्ते से चल भी रहे थे। आपको सुखदेव जी महाराज यही बोलेंगे, देखा जरूर लेकिन कहना मुश्किल है। वो स्त्रियां थी कि पुरुष थे, ये तो साक्षी भाव है। साक्षी का मतलब होता केवल देखना, वहां किसी भी प्रकार प्रतिक्रिया को पैदा करते हैं हम, तो प्रतिक्रिया के साथ हम उस वस्तु के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है हम वस्तु को देखें लेकिन प्रतिक्रियाओं को पैदा न होने दें। हमारा मन प्रतिक्रियाएं पैदा करता रहता है, आंखों से हम किसी वस्तु को देखते हैं और हमारे मन में प्रतिक्रियाएं पैदा होती जाती हैं। जय कृष्ण मूर्ति ने इसको गरुड़ की उड़ान बोला है। उन्होंने कहा कि जैसे आकाश में पक्षी उड़ता है लेकिन अपने पदचिन्ह छोड़ता नहीं है, आकाश में उड़ जाता है लेकिन अपने पदचिन्ह छोड़ता नहीं, वो उड़ जाता है। और वही पक्षी जब जमीन पर चलता है तो अपने पदचिन्ह अंकित करता हुआ, अपने संस्कार छोड़ता हुआ। आपको मालूम पड़ेगा यहां से पक्षी गुजरा है, लेकिन आकाश में आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि यहां से पक्षी गुजरा है। व्यास जी महाराज चल रहे हैं एक पक्षी की तरह, और सुखदेव जी महाराज उड़ रहे हैं आकाश में पक्षी की तरह। सुखदेव जी महाराज जी का उड़ना है आकाश में एक पक्षी के उड़ने की तरह, कोई संस्कार नहीं, कोई अन्वेषण नहीं, आंखों के सामने से वस्तु गुजर जाती है और उनके मन में कोई प्रतिक्रिया पैदा नहीं होती है, कोई उसके संस्कार अंकित नहीं होते हैं। इसलिए वहां कहना मुश्किल है कि वहां स्त्रियां थी कि पुरुष थे। एक आकृति आई सामने और उस आकृति के प्रति कोई मन में उत्सुकता ही नहीं है, और बात सही है, उत्सुकता के बिना हम वस्तु को कैसे जानेंगे कि स्त्री है कि पुरुष है। हमारी आंख हमारे अंदर उत्सुकता जगा देती है, और उत्सुकता और कोई नहीं, वो वासना का रूप है। और जब उत्सुकता जग जाती है तो हम और तल्लीनता से उस वस्तु को देखते हैं, और वो देखने की प्रक्रिया क्षणिक भी हो सकती है और वो देखने की प्रक्रिया थोड़ी दीर्घ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा मन इतना जटिल है, इतना सूक्ष्म है कि वो एक क्षण में भी बहुत कुछ देख सकता है। इसलिए प्रतिक्रिया के साथ जो दर्शन है वो प्रमाता का भाव है, ये जीव का भाव है। और जहां प्रतिक्रिया विहीन जो दृष्टि है देखना, वो साक्षी भाव। और जहां साक्षी भाव है नारायण, वहां मुक्ति है, वहां मोक्ष है, वहां जीवन मुक्ति है। इसलिए भगवान ने जो पांचवें अध्याय में कहा, पश्यें श्रृण्वन् स्पृशें जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपयें श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वम्। वहां देखता हुआ भी वो नहीं देखता, यही तो विशेषता है, यही तो अमात्र है, यही तो तुरी अवस्था है, यही तो साक्षी भाव, यही तो जीवन मुक्ति, यही तो आत्मबोध है, यही तो संबुद्धि है। जहां देखते हुए भी नहीं देखता है, ज्ञानी देखते हुए भी नहीं देखता है, वो छूते हुए भी नहीं छूता है, खाते हुए भी नहीं खाता है, चलते हुए भी नहीं चलता है। सुखदेव जी महाराज इसी स्थिति में है, ये चतुर्थ अवस्था। एक बार बुद्ध बैठे हैं, वहां से एक नवयुवती गुजर गई, किसी ने आके पूछा यहां से कोई गुजरा, बुद्ध ने कहा गुजरा जरूर लेकिन कहना मुश्किल, क्या गुजरा, लेकिन हम होते तो सब कुछ बता देते। ये जो चतुर्थ अवस्था, इसलिए यहां दोनों अवस्थाएं, इसलिए आप इसको ऐसा समझे यहां वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, ओम पद का वाच्यार्थ ये दुनिया है और लक्ष्यार्थ जो है आत्म तत्व। इसलिए भगवान राम ने उपदेश करते हुए कहा, ओंकार मात्र मिदम जगत, ये संपूर्ण जो जगत है ओंकार मात्र है। जब यहां ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो केवल परमात्मा का वाचक नहीं है, ओम माने सारी दुनिया भी और ओम माने परमात्मा भी, ये दोनों का वाचक है। इसलिए आगे आगे के श्लोक में, आगे के मंत्र में पर और अपर ये दो भेद से आपको कहा जाएगा। ओंकार का वाच्य ये अपर ब्रह्म है और ओंकार का लक्षार्थ जो है वो पर ब्रह्म है, त्वंपद लक्ष्य प्रत्यक आत्म तत्व ब्रह्म तत्व तुरीय पद। इसलिए चार पाद वाला जो ओंकार है, अकार उकार मकार और अमात्र, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय, विश्व तेजस प्राज्ञ और त्वंपद लक्ष्य साक्षी, इन चार पादों से परिपूर्ण जो ओंकार यही तत्व है। आचार्य यम ने बालक नचिकेता को कहा, जिस तत्व के बारे में तुम पूछ रहे हो वही तत्व है ओम, और इसको जानना है, हमें जानना है जागृत स्वप्न सुषुप्ति और त्वंपद लक्ष्य परमात्मा। और एक बार हम जान लेते हैं उसके बाद मालूम पड़ता है कि सब कुछ वही है, फिर उसके बाद फिर बाहर कोई चीजें नहीं रहती, हमारे संवेदना के बाहर कोई चीज नहीं रहती, फिर ये सारी चीजें हमारे भीतर, क्योंकि ओम आत्मा का भी नाम है और आत्म वेदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मसत्ता ब्रह्म सत्ता। ओम इति संग्रहेण ब्रवी में, बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा, क्यों बोला संक्षेप में, क्योंकि बहुत शब्द की द्वारा कहने की अपेक्षा अर्थ का अनुभव करना श्रेष्ठ है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, उसको कहने के लिए बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो सुनने वाला और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो कहने वाला, तो बहुत छोटी सी चीज में वो कह देता है और सामने वाला वो छोटी सी चीज से भी समझ लेता है। बालक नचिकेता भी बुद्धिमान है और आचार्य यम तत्वनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब शब्द विस्तार की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत संक्षिप्त शब्दों में मैं उस तत्व का प्रतिपादन करूंगा। आज प्रवचन को यहीं विराम, कल आप लोग 16वां श्लोक श्रवण करेंगे, बड़ा सुंदर प्रकरण है, आप सीधे बैठ जाएं। ॐ ह्रीं नमः शिवाय, 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 ॐ ह्रीं नमः शिवाय,
ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति।